chão. Né? जब हम ओम शांति कहते हैं मुझ आत्मा का सुधर्म शांति है मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूं और अब हमारा ब्रह्मा के अनुसार शांति धाम में वापस जाने का समय आ गया है। अब हम सबको क्या करना है घर चलना है और बाबा कहते हैं घर में तो नहीं बैठे रहना है और बाबा का जो वर्षा है सत्युग का स्वर्ग का फिर उसमें जाना है तो अब हमें प्यार के पेट्रोल से हमारा मन प्यार के पेट्रोल से चलता है तो प्रेम भरे हुए संकल्प से पहले फरिश्ता बनना है और फरिश्ता लोग भी सूरज चांद तारों से पार है फरिश्ता उड़ता रहता है उसके पैर धरती पर नहीं होते फरिश्ता सबको सुख देता है उसके बाद हमने शांति धाम में पहुंचना है आत्मा स्वरूप से सर्व गुण संपन्न नंबर वार आत्मा स्वरूप से और फिर हमें बिल्कुल नई दुनिया में आना है जहां पर सब कुछ नया ही नया है तो हमारा जो ये सारा कार्य है शिव बाबा ने एक यज्ञ के रूप से रचा है दुनिया में भी जब कोई आपदा आती है तो यज्ञ रचते हैं और उसमें आहुति डालते हैं कुछ ब्राह्मण यज्ञ को चलाते हैं पर वह यज्ञ तो बाबा के इस महान यज्ञ के रुद्र ज्ञान यज्ञ के यादगार तो ये जो बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ शिव बाबा ने रचा है सारी दुनिया को शुद्ध बनाने का हम सब हम और आप जो यहां बैठे हैं और भी 8700 यज्ञ ज्ञान यज्ञ बाबा ने सारे विश्व में रचे हुए और ब्राह्मण उनकी संभाल कर रहे हैं उस यज्ञ की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए रखने के लिए आहुति देते आए और बीच बीच में हम सब इसको महायज्ञ कहते हैं। तो इस महायज्ञ में भी बाबा ने विधि रची हुई है कि हम सब टर्न बाय टर्न इस महायज्ञ में भी आते हैं और हर बार यही संकल्प लेके आते हैं इस महायज्ञ में हम महाआहुति देंगे। अपने अपने यज्ञ में हम आहुति देते हैं और जब इस महायज्ञ में आते हैं तो महाआहुति देते हैं और स्वयं सारे यज्ञ के रचयिता बाप दादा हमारी इस स्नेह युक्त आहुति को स्वीकार करते हैं। उन यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित होती है और इस यज्ञ में योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और बाबा ने बताया हुआ है ये यज्ञ तब पूरा होगा जब सारे पुराने विश्व की इसमें आहुति पड़ेगी और विनाश ज्वाला भी इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होगी और उसको प्रज्वलित करने के निमित्त बाबा ने बच्चों को बनाया है क्योंकि इस यज्ञ का जो प्रसाद निकलेगा अंतिम आहुति के बाद वो बच्चों को ही मिलना है, बाबा तो न्यारा और प्यारा है। ये आहुति जो है हम प्रेम से देते हैं, हमें किसी ने बंधन में नहीं डाला है। जैसे दुनिया में भी मिलिट्री होती है, अपने देश के लिए जान निछावर करते हैं किंतु वो तो नौकरी करते हैं बंधन में। हम अपनी खुशी से यहां प्रेम से अपनी मर्जी से आए रामानुसार और हमारी जो समर्पण है, हमारी जो तन मन धन की संपूर्ण आहुति है वो लगन की अगन से होती है। जैसे एक परवाना, परवाना आप देखो यादगार है बच्चों का, ये परवाना अपनी खुशी से आके क्षमा पर फिदा हो जाता है, अपने प्राण भी समाप्त कर देता है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी यज्ञ की रचना और यज्ञ में आहुति देके उसको चलाते रहना ये अविनाशी यज्ञ है, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा चलता रहेगा और अंत में आके संपूर्ण आहुति देते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि कई परवाने होते हैं वो चक्कर लगाते हैं क्षमा के इर्द गिर्द, कई तो सीधा फिदा हो जाते हैं और कई कुछ चक्कर लगा के फिदा होते हैं और कई चक्कर लगा के देखते हैं सेक बहुत है गर्मी है वापस चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से चेतन परवाने भी ऐसे भी होते हैं कमजोर, जो आते हैं चक्कर लगाते हैं, फिर देखते हैं सेक बहुत है, आहुति देने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, आधी आहुति यज्ञ में चली जाती, आधी बाहर गिर जाती, अधूरी आहुति देते वो बिखर भी जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान हमें सेंसिबल बनाता है। सेंसिबल का मतलब जिसको अच्छे और बुरे की, फायदे और नुकसान की समझ हो, लेकिन ये सेंसिबल भी कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि में द्वंद या दुविधा पैदा कर देता है। आहुति देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर सोचते हैं कुछ चीजें तो पुरानी दुनिया में भी काम आ जाएंगी, क्यों ना उसको रख ले, तो आधी आहुति देते हैं आधी बचा लेते हैं। कारण क्यों, क्या सेंसिबल व्यक्ति की बुद्धि में प्रश्न पैदा होता है। आप जानते हैं पता नहीं विनाश कब आएगा, मेरे को कौन संभालेगा, कब तक जीना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज भी कहा कि एक है ज्ञान, ज्ञान मैंने जानना, और दूसरा है विज्ञान, योग, योग मैंने भूलना। तो अब हमें क्या याद रखना है, अगर वो याद रखेंगे तो बाकी आप ही भूल जाएगा। परवाना कभी परवाह नहीं करता, उसका नाम ही होता परवाना, जिसको परवाना। तो इसलिए सेंसिबल से एक कदम और आगे बढ़ के बाबा कहता है असेंसफुल। असेंस होता सार, सार युक्त बनना। सेंसिबल विस्तार युक्त होता है और असेंसफुल सार युक्त होता है। तो सार मैंने आत्मा, अगर हम और सब चीज को हटा दें तो आत्मा ही बचती है। परम धाम में आत्मा ने ही जाना है संस्कार लेकर, सतयुग में भी आत्मा ने ही आना संस्कार लेकर। आत्मा बचती है, और चीजों को खोने की भय और चिंता रहती है। बाबा ने कहा है इंश्योर कराते हैं, लेकिन आत्मा को इंश्योर कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सदा है ही है। इसलिए आहुति हम देते आए हैं, परंतु यदि समय की सुई को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे। अब समय की सुई, अब तो दुनिया भी बोल रही है, आसार भी बोल रहे हैं कि ये यज्ञ अब समाप्ति की ओर है, ये यज्ञ बाबा ने किसी लक्ष्य से रचा है। हम सबको वो लक्ष्य पता है, یہ ایک یاترا ہے, یہ کوئی منزل نہیں ہے. ہم لوگ یاد کی یاترا پر ہیں, تو یاترا کی منزل کیا ہے؟ تو بابا کہتے ہیں اب اگلی منزل تو فرشتہ بننے کی ہے, اس سے اگلی منزل پرم دھام میں جانے کی ہے, اور اس سے اگلی منزل پھر نیا چکر شروع ہوگا اس میں آنے کی ہے. تو یاتری کا دھیان اس اسٹیشن کی طرف نہیں رہتا جس کو وہ چھوڑ کے آیا ہے, اور اس کو اور بھی نہیں رہتا جو رستے میں آتا ہے, اس کا دھیان منزل کی اور ہوتا ہے. اس لیے ہم نے آج کا وشے انتم آہوتی رکھا ہے. آہوتی تو ہم سب دیتے ہی آئے ہیں, پرنتو انتم آہوتی آپ جانتے ہیں کہ ایز اے براہمن ہر ایک کو مجھے کیا آہوتی دینی ہے. بابا کہتے ہیں براہمنوں کا بھی ایک سنسار ہوتا ہے, اور ہم سب کا اپنا اپنا سنسار ہے, اپنی اپنی دنیا ہے. اور وہ سنسار ہم نے اپنے سنکلپوں سے رچا ہوا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں میں, میرا, میرے, پھر سوکشم میں سبھاؤ, سنسکار, عادتیں, یہ سب ہماری دنیا ہے. تو بابا کہتے ہیں کہ سارے وشو کو پریورتن سے پہلے ہمیں اس سنسار کو پریورتن سے پہلے ہمیں اپنے سنسار کو پریورتت کرنا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ جو سکہ آنے والی دنیا میں چل رہا ہے اس سکے کو گرہن کرنا ہے, اور جو کھوتا اور پرانا سکہ ہے جو وہاں نہیں چلنا ہے اس کو جلدی سے جلدی چھٹکارا پانا ہے. کیونکہ چھوٹے گا تو ویسے بھی کسی کی دبیرے دھول میں, کسی کی راجا کھائے, کسی کی چور لے جائے, کسی کی آگ جلائے, بابا نے ان ایڈوانس بتایا ہوا. تو پیارے بابا نے کیا کیا, مما نے کیا کیا, آدھی رتنوں نے کیا کیا کہ مر جیوا بن گئے. بابا سب کچھ تیرا ہے. تو اس لیے سب سے پہلا کام انتم آہوتی کی تیاری کے لیے میرے کو تیرا کرنا ہے, ارتھات میں نمت ہوں. یہ شریر بھی نمت ہے, یہ سادھن بھی نمت ہے, میں نہیں. کیونکہ جو ہی ہم نے پرانا میں کہا تو آپ کے پاس پرانے سنکلپوں کے, پرانے سنسکاروں کے بھوت گھیر لیں گے آپ کو, اور جب آپ آگے بڑھنا چاہیں گے تو پیچھے سے کھینچیں گے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہ بھی چھوڑو, یہ بھی چھوڑو, یہ بھی چھوڑو, تو چھوڑنے کی مالا رکھیں گے تو وہ زیادہ یاد آئے گا. اس لیے یہ بھی پاؤ, یہ بھی پاؤ, یہ بھی پاؤ, تو نئی چیزوں کی گرہن کرنے کی دھارنا کریں گے تو آپ ہی چھوٹ جائے گا. کسی کو ایک دم 100% ستوگنی دنیا میں جانے کا چانس ہو सब कुछ नया, और वो भी 21 जन्मों के लिए सुखदायी, ना वहां रोग, ना वहां शरीर का कोई अंग खराब, कोई भी चीज डिस्टर्ब करने वाली नहीं, तो वो तो खुशी से उसको छोड़ेगा। और हम सब इस बात को समझ कर ही ब्राह्मण बने। तो बाबा एक तरफ पुण्य कराता है, यज्ञ को चलवाता है, और दूसरी तरफ जितना जितना हम आहुति देते हैं उतना उतना ही हम दूसरों से दिलवा सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण आहुति दी उनसे हमें संपूर्ण आहुति की प्रेरणा मिलती है। जो अधूरी आहुति देते हैं वो दूसरे को भी अधूरी आहुति ही दिलवा सकते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि अंतिम आहुति हमें कब देनी है? क्या लास्ट घड़ी में देनी है? अगर तो लास्ट घड़ी का पता नहीं कब आ जाए, लेकिन चलो ये सोचे कि जब लास्ट घड़ी आएगी हम दे देंगे, है तो ये धोखा। परंतु अगर लास्ट घड़ी में आहुति देंगे तो दूसरों से कब दिलवाए? तो ब्राह्मण का तो ये काम है कि आहुति में देखो बाबा ने आहुति दी, आज हम कितने हो गए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। और आहुति तो सिंपल है, किस चीज की देनी है? एक तो मेरेपन की और एक पुरानेपन की, यानी हम जो कुछ भी करते हैं बाबा को अर्पित करते। अब एक बात बाबा को सामने लाए, अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्म अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे, एक तो निमित्त बन गए, मेरा नहीं रहा, और दूसरे जिम्मेवार बाबा हो गया। घर में भी किसी बड़े से हम पूछ को बता देते हैं हम ये कर रहे हैं, और वो गाइड कर देते हैं ऐसे करो। उसके बाद जैसा भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर नहीं रहती, हमें वो कार्य हुआ उसका फिर संकल्प पैदा नहीं होता, कैसा हुआ, क्यों हुआ, समर्पित कर दिया। यज्ञ में भी ऐसा ही होता है, जब आप किसी चीज की आहुति दे देते हैं तो अग्नि उसको स्वाहा कर देती है, उसके बाद उसका नामो निशान पुराना नहीं रहता। और सिर्फ अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो सफाई करता है, शुद्धिकरण करता है, पर खुद सदा साफ रहता है। और जितने भी तत्व हैं वो शुद्ध करेंगे, खुद में खराबी आ जाएगी। पानी में आप कपड़ा धोएं, कपड़ा साफ पानी मैला, हवा में आप कुछ करें हवा खराब हो जाती है, धरती भी खराब हो जाती है। किंतु अग्नि तो बाबा की इसलिए यज्ञ रचते हैं, और ये योग अग्नि में हमें कहते हैं आहुति दो। अब आप देखिए आहुति में स्वाहा होता है, आहुति का मुख्य शब्द है स्वाहा। अब बाबा कहते हैं स्वाहा का क्या मतलब हुआ कि उसके बाद वो चीज بسمیں بھوت ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اور جیسے راکھ کے اندر کبھی کچھ اگتا نہیں ہے، اسی پرکار سے آپ نے جو سہا کیا وہ آپ کو دوبارہ کبھی یاد نہیں آئے گا، اس کا سنکلپ نہیں آئے گا، اس کا سپن نہیں آئے گا. تو بابا صحابی کیا کرواتا ہے؟ بابا کہتا ہے کہ میں پرانے سنسکاروں کو سہا کراتا ہوں، پرانے کرم بندنوں کو سہا کراتا ہوں، پرانی دیہ کی اٹیچمنٹ کو سہا کراتا ہوں. ایسا تو نہیں ہم پرانی دیہ چھوڑ دیتے ہیں تو آگے ہم کو دیہ ہی نہیں ملتی. ارے بابا کہتا ہے چمکیلی ڈریس ملتی ہے، پھر گولڈن ڈریس ملتی ہے، یہ تو سب سے گھٹیا والی ہے. اس لیے اگر ہمیں ٹیسٹ کرنا ہو کہ ہماری آہوتی کہاں تک پوری ہوئی ہے، تو بابا نے بتایا ہے، آج بھی بتایا ہے، اچھا ماترم اودیا. پرانی دنیا کی کوئی بھی اچھا رکھنا، آکانکھا رکھنا، وہ ممتا رکھنا، ارتھات ابھی مایا کو پہچانا نہیں ہے، اور اگر پہچانا ہے تو اس کو چھوڑنے کی شکتی نہیں ہے، اسینس فل نہیں. سینس ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ دھارن کرنا ہے. اس لیے اچھا ماترم اودیا، یا یوں کہیں بے حد کی ویراگ وتی. یہ جیسے کسی راجا کی نظر دھرتی پر گری ہوئی کسی چیز پر نہیں پڑتی، آج بھی کوئی تتھا کتھت وی آئی پی ہوتا ہے تو کارپیٹ بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں دھرتی پر نہ پڑے. تو بابا کہتے ہیں کہ گری ہوئی چیز ارتھات مٹی کی بنی ہوئی چیز، پرانے پانچ تتوں کی بنی ہوئی چیز میں آنکھ نہ ڈوبے، کمل کی طرح رہے، تو یہ ہے بے حد کی وراغ ملتی. تو ہمارا سارا جان وراغ کا نہیں ہے، تیاگ کا نہیں ہے، سنیاس کا بھی نہیں ہے، ہمارا سارا جان پریم کا. ہم سب پچھلی مرلی میں بابا نے کیا کہا، دو ہی شبد کہے کہ بابا کے دل میں بچے اور بچوں کے دل میں بابا. آپ سب کے دل میں کون ہے جو ہم سب کو کھینچ کر یہاں لائے؟ جو کہتے ہیں بابا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہ سبھی ہاتھ اٹھا دیں. تو پریم کا سودا ہے. اب دیکھیے ہم نے بابا سے پریم کیا تو بابا نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا، اور ہمارا گھٹیا بٹیا بھی لے کے خلاص کر دیا، ہم کو ستیگ میں بھیج دیا. ستیگ میں پریم ہی پریم ہے، پریم ہی پریم ہے، پریم ہی پریم ہے. تریتا میں بھی تھوڑا سا کم، تھوڑا سا، پر پریم ہی پریم ہے، پریم ہی پریم ہے، پریم ہی پریم ہے. آتماؤں کا نیچرل پریم ہے. دواپر میں کیا ہوا؟ ہم نے پریم کی ڈیفینیشن تھوڑی بدل دی. پرماننٹ چیز جو آتما ہے اس سے ہم باڈی کے ساتھ پریم میں لگ گئے، کیونکہ باڈی دکھتی ہے، آتما دکھتی نہیں ہے. تھوڑا سا لگے آتما بھی رہی، باڈی بھی رہی. دھیرے دھیرے ہمارا پریم شریر میں ہو گیا، اور شریر کا ارتھ ہے شریر وناشی، تو شریر کے سمبندھ بھی وناشی، पता है आत्मा को एक जन्म के बाद शरीर बदलना है, संबंधी बदलने हैं, परंतु इतना प्रेम शरीर के संबंधियों से, जो बाबा बंदर का मिसाल देता है कि बंदर मरे हुए बच्चे को भी बंदरी पकड़ के चलती है। आजकल भी कोई गाय भैंस दूध नहीं देती तो उसके मरे हुए बच्चे की खाल उसके आगे रख देते हैं, उसको चाटती रहती है और दूध देती रहती है। अब सोचो फिर पैसे से प्यार, साधनों से प्यार, व्यक्तियों से प्यार, वस्तुओं से प्यार, आत्मा का प्यार खत्म। तो वो जो प्यार था एक बाबा से और फिर बाबा की एक रचना से, आत्मा से, वो बिखर गया। अब कहते एक दिल के टुकड़े हजार हुए। अब आप अपने प्यार को देखो बैठकर कितना बिखर गया। पुरानी आदतों से प्यार तंग भी करती है फिर भी उससे प्यार, जैसे कोई मिर्च खाता है सीसी भी करता रहता, खाता भी रहता है, दुख भी देते हैं फिर भी उससे प्यार। तो प्यार इतना बदल बिखर गया कि प्यार की वैल्यू ही खत्म हो गई, उसमें ताकत घट गई। अब बाबा क्या कहता है, समेटो। तो ये बुद्धि का सौदा नहीं है, बुद्धि तो सेंसिबल बनाती है, ये दिल का सौदा है। तो बाबा ने क्या कहा, मेरी बुद्धि में बच्चे या मेरे दिल में बच्चे? बच्चों ने क्या कहा, मेरे दिल में बाबा या मेरी बुद्धि में बाबा? बुद्धि में तो और भी बहुत कुछ होगा। इसलिए तो प्यार का ही रास्ता है, हमने बिखरे हुए प्यार को इकट्ठा करना है और एक बाबा से करना है, यही एसेंसफुल है। आखिर क्या बचेगा, आत्मा ही बचेगी, आत्मा तो खत्म नहीं होती। तब बाबा ने कहा कि अंतिम आहुति का अर्थ क्या है, अपने आत्म स्वरूप में, जो कि हमारा अविनाशी आत्म स्वरूप है, ओरिजिनल आत्म स्वरूप है, उसमें टिकना। और बाबा ने आसान करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रच दिया कि आत्मा बन के क्या करेंगे, शरीर में रहो, सिर्फ अपने संबंधों को शुद्ध कर लो, लौकिक को भी अलौकिक कर लो, अलौकिक तो बाबा देता ही है। तो अलौकिक ये ब्राह्मण जीवन अलौकिक है, इसका प्यार भी अलौकिक है, ज्यादा रिश्ते नहीं है, एक बाबा और बच्चे, और इसका सुख भी अलौकिक है, दुनिया वाला सुख नहीं है, इसमें तो प्रेम का सुख है, शांति का सुख है, सुख का सुख है, शक्तियों का सुख है, उस तरह का सुख है जिसमें आपका कुछ लगता भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हम सब अंतिम आहुति मन से ही देनी है। अंतिम आहुति का यह मतलब नहीं है कि आप शरीर छोड़ दें, नहीं। अब जैसे दादी जानकी हैं, दादी गुजार हैं, वो तो आपके सामने हैं, बाकियों की तो आपने हिस्ट्री सुनी होगी। दादी रतन मोहिनी जी हैं, ये तो आपके सामने हैं, मधुबन में आप इसीलिए आते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, अंतिम आहुति दी हुई और निमित्त बन के क्या कर रहे हैं, दूसरे से आहुति दिलवा रहे हैं। हम उनको देखते हैं, दादी जानकी 98 ईयर्स की एज, आपकी तो शायद बहुत कम होगी, किसी किसी की होगी, उस एज में भी कर्मों का हिसाब भी आता है, शाम को शरीर चलता नहीं है, आकर के क्या करती है, एग्जाम्पल है प्रकृति को जीतने की, हिसाब किताब की कोई बात नहीं, शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं, आत्मा को मुक्त रखने की। तो जीवन मुक्ति और मुक्ति हमें यही अनुभव करनी है, यहां ही हमें स्वच्छ संस्कार धारण करने हैं, اس لیے بہت آسان طریقہ بابا نے بتایا, سب کچھ چھوڑ کے ایک بار. بابا کہتا ہے برہما نے یگ رچا, برہما نے سنکلپ کیا, سرشٹی رچ دی. کون سی سرشٹی رچ دی؟ برہما نے سنکلپ کر کے کوئی پرانی سرشٹی نہیں رچی, وہ تو ہو گئی ہے. شدھ سنکلپ کیا. تو بابا بھی ہمیں کیا کہتا ہے, ہر ایک برہمن فری ہے, کیول ایک ہی دھیان رکھنا کہ ستیگ میں کیا ہوتا ہے, سرو گن سمپن. فرشتہ بھی ادگن نہیں رکھتا, سمپل ہے. جہاں جانا ہے جو یگی کی پرسادی ہے, جو انتم آہوتی پر ہی پرسادی بانٹی جاتی ہے, اور انتم آہوتی سب کو اکٹھے مل کے دینی ہے, کیونکہ ایک دو چار سو نے تو دی, پرنتو سارے وشو کو چینج کرنے کے لیے اتنی زبردست شبھ بھاونا کی پاور چاہیے, اتنا سینٹ چاہیے جو خوشبو پھیل جائے, لوکل سینٹ نہیں. تو اس لیے سینٹ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, شبھ شبھ سنکلپ. من آپ کا ہے, آتما میں من ہے, اور آتما نے ہی جانا ہے. فرشتہ بھی آتما نہیں بننا ہے, یہیں ٹرائی کرو. پرم دھام میں بھی آتما نہیں جانا ہے, یہیں باڈی سے ڈیٹیچ ہونے کی ٹرائی کرو. دیوتا بھی آتما نہیں بننا ہے, ستیگ میں بھی سیر کرو. بابا نے ہم کو ڈرل سکھائی ہے, جب ہم آتما سروپ میں پرم دھام میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بھی تو من ٹکتا ہے, فرشتہ روپ میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو من ٹکتا ہے, ادھر ادھر تو نہیں بھاگتا. ستیگ میں جاتے ہیں تو من وہاں ٹکتا ہے, ادھر ادھر تو نہیں بھاگتا. تو ہم نے ہی یہ سارا پاٹھ لمبا 5000 ورش کا بجایا ہوا ہے. دنیا میں کسی آتما کو پتا نہیں دھاما کتنے ورش کا ہے, پرم دھام کہاں ہے, ستیگ کہاں ہے, اب کیا ہے, ہم کو تو پتا ہے. تو بابا کہتے اس پاور کو یوز کرو, یوگ لگانے کا طریقہ بھی بتایا ہے, اس لیے اتنا ہی دھیان رکھیں کہ ہمارے من میں شبھ بھاونا اور شبھ بھاونا رہے, کامنا رہے. بس پرستھتی کوئی بھی آئے, ویکتی کوئی بھی آئے, خیالات کوئی بھی آئے, پچھلے سنکلپ جاگے, کچھ بھی ہو, اگر ہم جیسے خراب چیز کو صاف کیا جاتا ہے تو خوب پانی ڈالتے ہیں, خوب پانی ڈالتے ہیں, وہ چیز میل دھل جاتا. اگنی میں ڈال دو تو بابا نے کل بھی مرلی میں کہا ہے کہ جو گولڈ ہوتا ہے گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے اگنی جلائی جاتی ہے, اس کے سارے الوئے اس میں چاندی ملی ہو, تانبا ملا ہو, کچھ بھی ملا ہو, رہ جاتے ہیں, گولڈ پیور رہ جاتا ہے. اور پیور گولڈ کا زیور بھی پیور بنے گا, اس لیے ہم نے اپنے من کو پیور گولڈ بنانا, بلکہ ڈائمنڈ بنانا ہے, تاکہ ڈائمنڈ تو سخت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں آتا, چمکتا بھی ہے. تو ہم تو ڈائمنڈ ایج میں ہیں, اس لیے بابا کہتے ہیں آپ سب مہا یگ میں آئے ہو. تو آہوتی میں نے سمپورن آہوتی, سمپورن آہوتی میں نے سمپورن کمیوں کی آہوتی, پرانے سنسکاروں کی آہوتی, اور پکا دڑھ سنکلپ اب یہ ہم نے واپس نہیں لینا. آگ میں ڈالا سہا ہو گیا, تو یہ مہا یگ ہے. کل بابا بھی آئیں گے, آپ سب لوگ آتے بھی ہم اسی ایم سے ہیں کہ ایک بار ایسا بن کے جائیں جو دنیا میں جا کے ویسے ہی بنائیں, نہ کہ پرانی چیز بھوت واپس آئے. اس کے لیے آپ تیاری کریے, ہمیں سمپورن آہوتی دینی ہے اور शुभ भावना शुभ काम। कई ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं हमें इतना तंग करते हैं, इतना दुखी करते हैं, हमारे लिए इतना झूठ बोलते हैं, हमारा रूप बदल के दिखाते हैं कि हमारे मन में उनके लिए शुभ भावना उठती है। अब क्या किया जाए? अब आप देखो, अगर हम अपने मन में, मन तो आपका है, अशुभ सोचते रहेंगे, दूसरों के अवगुण धारण करते रहेंगे, तो आपके मन में क्या भर जाएगा? आपका मन अच्छा है, आपकी बाल्टी साफ है, लेकिन अगर आप अपनी बाल्टी में पड़ोसी का कूड़ा करकट, दूसरे का कूड़ा करकट भर लेंगे, बाल्टी अच्छी हुई तो क्या हुआ, मरा क्या उसमें, वो तो कूड़े की बाल्टी हो जाएगी। सतयुग में कूड़ा होता है? आपके ख्याल में स्वर्ग में कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, या गार्बेज डंप होता है जैसे आप सड़कों में देखते हैं? स्वर्गीय है वो तो कूड़ा पैदा कहां होता? मन में। तो आज के मनुष्यों के मन में ऐसी मशीन लगी हुई है, माया ने लगाई है, जो अच्छी चीज को भी खराब कर लेती है, बेस्ट को भी वेस्ट कर देती है। और हमारे मन में बाबा ने वो मशीन लगाई है जो वेस्ट को भी बेस्ट कर देती है, सारी पुरानी दुनिया कितने जैसी स्वर्ग बना देती है। तो हमको वो मशीन जब मिल रही है तो हम उल्टी मशीन क्यों लगाएं? इसलिए मन में कोई चीज कैसी भी हो, हमें उसको बेस्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? संकल्प से। ब्राह्मणों के पास संकल्प शक्ति है, शुद्ध संकल्प, और शुद्ध संकल्प से कुछ भी आए, मुझे अंदर क्या धारण करना है, वो कौन है, कैसा है, वो जाने, मैंने क्या लेना है, मुझे तो अपना जीवन ठीक करना है ना। मैं तो यज्ञ का रक्षक मैं हूं, बाबा ने यज्ञ मुझे दिया हुआ है, तो उसकी आहुति उसमें डाल दो। तो इसलिए अग्नि आपके पास है, बाबा की लगन आपके पास है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जो यज्ञ रचता है, यज्ञ को संभालता है, ये तो ध्यान रखता है कि अग्नि जलती रहे, ठंडी ना हो जाए। इसलिए लास्ट बात ये है, हम मन वाणी और कर्म तीन चीजें हम करते हैं। हमारे मन में संकल्प उठते हैं, वाणी से हम कुछ बोलते हैं, कुछ उसके बाद कर्म में आता है। अब देखिए वाणी में क्या आता है, जो मन में होता है, कितना भी हम चेंज करके उसको मीठा करके बताने की कोशिश करें, लेकिन दिल की बात चेहरे पर आ जाती है, जुबान पर आ जाती है। इसलिए अपने मन में, आज हमने गीत भी सुना, ओ बाबा तुम कितने निरंकारी हो, अपने को सेवाधारी कहते हो, तो ब्राह्मण का क्या ना, हमारा क्या कर्तव्य है? विश्व की सेवा। तो हमारे अंदर जो भी संकल्प उठे वो तो सेवा का उठे। दुनिया में स्वार्थ के उठते हैं, वो सेवा भी स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ नाम मिल जाए, कुछ मान मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कुछ वस्तु मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, वो सेवा नहीं होती। बाबा कहता है विश्व सेवाधारी। तो हमारे मन में जो भी संकल्प उठे, मान लो आप कहीं भोजन के लिए बैठ रहे हैं, दूसरा भी आके बैठ रहा है, दुनिया वाला क्या करेगा? पहले मैं बैठता हूं, वो ना बैठे। हम क्या करेंगे? पहले उसको बिठाएंगे। जो ही आपने उसको बिठाया, आपके अंदर वो खुशी आएगी, कमाल की खुशी आएगी। तो सेवा भाव मैंने दूसरे को आगे रखना, दूसरे को सम्मान देना, ऐसे नहीं, जब मैं होती है तो व्यक्ति मैं बोलता है, जब सेवादारी होता है, दुनिया में भी देखो किसी बड़े होटल में जाओ, बड़ी अच्छी वर्दी पहने होते सेवादारी, ऐसे झुक के सर बोलते हैं, वो तो प्रोफेशन से बोलते हैं, हमारा तो ये धर्म है। तो ब्राह्मण का धर्म और कर्म क्या है? सेवाधारी संकल्प में। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बोल में, बोल में बाबा कल भी मुरली चलाई थी, आपके बोल कैसे होने चाहिए, फूल जैसे, लोग बोल सुन के ठंड पड़ जाए उनको, जैसे गुलजार दादी बोलती है, हैं? थोड़े बोल। इसलिए हमारे बोल कल्याणकारी होने चाहिए, किसी का अकल्याण अशुभ ना हो जाए, उसको मल्लम लगाने के होने चाहिए संतुष्ट, तो बोल हमारे विश्व कल्याणी के होने चाहिए। संकल्प विश्व सेवाधारी, बोल विश्व कल्याणी, और कर्म चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, लौकिक हो अलौकिक हो, हर एक अपने कर्म की क्वालिटी देखनी है। चाहे हम बर्तन ही मांज रहे हो, हमारे कर्म में बर्तन भी मांजे तो ये नहीं मैं बर्तन मांज रहा हूं, नहीं, अरे किसके बर्तन मांज रहा हूं, इससे किस किस का फायदा होने वाला है, ये तो मुझे भाग्य मिला है, मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मिला है। आजकल लोग नेता लोग झाड़ू उठाते हैं अभिमान तोड़ने के लिए, जो बड़ा करेगा छोटे उसको देख के करेंगे। तो हमारे कर्म विश्व परिवर्तन के होने चाहिए, विश्व परिवर्तन हमें अपने कर्म से दिखाना, तो विश्व परिवर्तन। तब बाबा कहता है आपकी अंतिम आहुति का मतलब क्या है, कि हमारे से दूसरे को बाबा की झलक मिले कि बाबा कैसा है, उनको लगे कि ऐसा है, तो फिर हमारी अंतिम आहुति चलेगी और आप फील करेंगे कि अलौकिक खुशी क्या होती है, उसकी भेंट में दुनिया के सब सुख झूठे। ओम शांति।